नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम हमसे है देश की पांचवीं कड़ी में। मैं हूँ कामायनी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट कबीर।
तो कम्मो दीदी, हमारे पिछले एपिसोड में हमने संविधान की बात की थी, पर इस संविधान को लिखने की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू हुई, क्यों ना आज इस पर थोड़ी और बात करें।
बिल्कुल कर सकते हैं कबीर। क्या तुम्हें पता है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ?
हाँ, ये तो पता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है। पर पहले क्या हुआ था, आजादी या संविधान?
ऑफ कोर्स, पहले आजादी मिली थी और फिर संविधान लागू हुआ था।
अपना बुलबुल बाग भी तो अपने संविधान के चलते कितनी मुश्किलों का सामना कर पाता है। आइए सुनते हैं बुलबुल बाग में क्या हुआ अपने अगले सेगमेंट बेताल छब्बीसी में।
बेताल छब्बीसी, बेताल छब्बीसी रे।
बेताल, बेताल।
अरे भाई क्या हुआ, इतनी क्या बेचैनी है?
बेताल, मेरे राज्य में, मेरा मतलब हमारे राज्य में महामारी फैल गई है।
अरे बाप रे, ये तो चिंता का विषय है। आओ तुम्हें बुलबुल बाग की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताऊं। बुलबुल बाग जो एक संपन्न राज्य था, उस पर धीरे धीरे अकाल के बादल मंडराने लगे। इस सब से भोला भालू बहुत परेशान था।
अरे गांव गांव भाई, तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि मरे हुए जानवरों से अपना पेट भर लेते हो। अरे अब तो अकाल में न जाने कितने जानवर मर रहे हैं।
भोले भालू, सच्ची कहा है किसी ने कि मुंह को जरा खाना ना मिले तो जबान बड़ी कड़वी हो जाती है। तुम भी कई दिन के भूखे लगते हो।
अरे माफ करना काओ काओ भाई, पर ना तो यहाँ पानी है ना ना खाना है, फ्रस्ट्रेशन में और क्या बोलूं मैं।
हुकुमचंद हंस, आपने पूरे जंगल का ब्यौरा लिया है, आपकी क्या राय है?
अरे चींटी जी, पूरे इलाके का बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ सूखा पड़ा है, नदी नहर सूख चुके हैं, जानवर और पक्षियों के पास खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं है। दिन पर दिन जानवर और पक्षी मरते जा रहे हैं। शेख चंद सारस ने भी ब्यौरा लिया था। शेख चंद, तुम बताओ।
हाँ हाँ, मैंने भी ऐसा ही हाल देखा, और बल्कि बुलबुल बाग के कुछ जानवर और पक्षी दूसरे जंगलों का रुख करने लगे हैं, पर लंबे रास्ते नापने की ताकत रहती नहीं तो आधे रास्ते ही कई जानवर दम तोड़ देते हैं। चपल चीटी, आप ही कुछ सुझाएं।
कैसा हो अगर दूसरे जंगलों के संसाधन बुलबुल बाग में ही जानवरों को मिल जाए? अकाल से भी छुटकारा मिलेगा और जानवरों को लंबी यात्रा भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्या कहते हो हंस?
बात तो आपकी ठीक है चपल चींटी जी, पर दूसरे जंगल अपने संसाधन हमें क्यों देंगे भला? क्यों नेक नेवले जी?
असल में दे सकते हैं, अगर हम उनसे व्यवसाय की तरह मांगे तब, यानी लेन देन। सही कहा ना चपल चींटी?
हाँ नेक नेवला जी, बिल्कुल सही। हमें एक वनस्पति समझौता करना होगा और उसका नाम होगा लेन देन से गेन समझौता। इसका प्रस्ताव हम सभा में रखते हैं।
अगले ही दिन सभा में अकाल से बचने के लिए लेन देन से गेन समझौता रखा गया। सभी सहयोगी जैसे घुमक्कड़ घिरनी, बातूनी बंदर, हुकुमचंद हंस, शेख चंद सारस वगैरह वहाँ मौजूद थे। बातूनी बंदर हमेशा की तरह रूखे तेवरों में बोला,
अरे ये क्या बात हुई भला, हैं? ए बुलबुल बाग को क्या अब अपने पड़ोसी जंगलों से भीख मांगनी पड़ेगी? हैं? दूसरे जंगलों की वनस्पति अलग है, अगर उनके पेड़ पौधे हमारे यहाँ आए तो क्या बुलबुल बाग की सदियों पुरानी विरासत को नुकसान नहीं पहुँचेगा? हैं? क्यों घिरनी?
नहीं, बल्कि अच्छा ही होगा। जो कमी बुलबुल बाग में है उसे भी पूरा किया जा सकता है। हम तो घूमती रहती हैं, सो हमें पता है कि बुलबुल बाग में क्या है क्या नहीं। शेख चंद सारस भी इस बात को जानते हैं, क्यों सारस भाई?
हाँ,
बात तो घुमक्कड़ घिरने की ठीक है, और हमारा बनाया कागज़े कायदा भी आसपास के जंगलों से लेन देन की अनुमति देता है।
मुझे आपत्ति बस इतनी है कि बुलबुल बाग के जानवरों को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो हमें भी नहीं, पर उनकी सहमति तो चाहिए, क्यों चपल चींटी जी?
बिल्कुल ठीक, तो आप ही उनकी आवाज हैं, आप उनका भला बुरा जानते हैं। हम इस समझौते की वोटिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगर बुलबुल बाग आज सहमति में गूंज गया तो मानो लेन देन से गेन समझौता आ ही गया।
वोटिंग के बाद ये साफ हो जाता है कि बुलबुल बाग में आई ऐसी आपदा का सभी को एक ही उपाय दिखाई दिया, समझौता। पड़ोसी जंगलों से समझौते के बाद संसाधनों का लेन देन हुआ और अकाल के बादल धीरे धीरे छट गए। तो क्या समझे? अब तुम लोगों को महामारी से छुटकारा कैसे दिलाओगे? सही जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और जानबूझकर गलत जवाब दिया तो तुम भस्म हो जाओगे।
देखो बेताल, मुझे लोगों के हित को अपने हित से पहले रखना होगा, जैसे बातूनी बंदर ने रखा। तभी महामारी से निजात मिलेगी और मैं लोकतंत्र का हिस्सा भी बना रहूंगा।
बिल्कुल ठीक, और अब मैं चला।
अरे बेताल, बेताल, अरे सुनो बेताल, बेताल।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमसे है देश, मैं हूँ कम्मो और मेरे साथ हैं कबीर।
तो बुलबुल बाग ने अपने ऊपर मंडराती मुश्किल का सामना किया, और वो भी पूरे संवैधानिक ढंग से।
पर संविधान और संवैधानिक ढंग लाना आसान काम नहीं होता कबीर। आइए आपको भारत के संविधान की दास्तान बताएं हमारे अगले सेगमेंट देश विदेश में।
देश विदेश से।
क्या आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी वो समिति जिसने संविधान बनाया, उसका गठन ब्रिटिश शासन के रहते हुए ही हुआ। समिति के सभी सदस्यों का चयन 1946 के इलेक्शन से हुआ। समिति में कुल 299 सदस्य थे, जिनमें से 9 महिलाएं भी थीं। 2 सितंबर 1946 को इस नई बनी समिति के जरिए भारत की अंतरिम सरकार बनाई गई।
टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक।
मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को रचने की जिम्मेदारी समिति की एडवाइजरी कमिटी को दी गई, जिसके सदस्य थे बी.आर. अंबेडकर, दीवान बहादुर, आचार्य जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, के.एम. पंडिकर, डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी और वी.बी. पटेल। और संवैधानिक बैठक में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का एक प्रसिद्ध भाषण है।
हमारी मुश्किल आने वाले कल की बजाय आज की है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश की विविधता, जिसे साथ मिलकर निर्णय लेने हैं, और ऐसे मार्ग पर साथ चलना है जो इस अनेकता से एकता तक का रास्ता आसान कर दे। हमारी मुश्किल इस बात की नहीं है कि कहां जाना है, बल्कि कहां से शुरुआत करनी है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए शुरुआत में इस देश के हर तबके को साथ लेने के लिए हमें कुछ समझौते करने हैं, उन लोगों के साथ भी जो अभी साथ नहीं चलना चाहते। इसीलिए उन बातों को छोड़ना होगा जिनसे लोगों के मन में खौफ पैदा होता है, और हमें अपने विरोधी पक्षों से भी समझौता करना है, ताकि आजादी की इस राह पर हम साथ साथ चलें।
भारत के संविधान के बारे में हमने तो आपको इतना कुछ नया बता दिया। चलिए अब आप सबसे ही पूछ लेते हैं कि आप संविधान के बारे में क्या सोचते हैं।
जी हाँ, अपने अगले सेगमेंट एक था नागरिक में।
एक था नागरिक,
नागरिक,
एक था नागरिक,
नागरिक।
तो बताइए कि भारत के संविधान की सबसे अहम बात आपको क्या लगती है?
पहली बात तो ये दुनिया का पहला लिखित सबसे बड़ा संविधान है, तो और ये पूरे इतने बड़े मुल्क को एक धागे में पिरोने के समान है।
ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, ऐसे रेट देता है जो सबको बराबर लेके चलते हैं सब।
सबसे अच्छी चीज़ यह है कि राइट टू वोट और राइट टू लिव व्हाटएवर यू से आरटीआईज वगैरह जो भी संविधान के अंदर जो जो पहलू है।
सही बताऊँ तो मुझे प्रीएम्बल बहुत अच्छा लगता है, बट वो फॉलो नहीं होता, वो उसका भी दुख होता है।
वो हमारे भारत का स्ट्रक्चर है, लाइक सो इट्स अ प्रॉपर बॉडी ऑफ लॉज।
समानता जो जाति धर्म और लिंग से ऊपर उठकर है।
एक देश पूरा कैसे चल सकता है, अलग अलग तरीके उसमें आ जाते हैं कि ये इन लोगों की ये नेसेसिटी होगी तो उस हिसाब से उसमें सारे प्रोविजंस हैं।
भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हमें सबको एक समान माना गया है। भारत में संविधान में कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसके अकॉर्डिंग सारे समान है।
भारत के संविधान में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वे हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और एक्चुअली अगर हम देखें तो उन्हीं में हमें सारे अधिकार मिल जाते हैं।
तो सुना कबीर तुमने, नागरिकों के अनुसार भी भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान तो है ही, साथ ही ये हम सबको बराबर का हक भी देता है।
बिल्कुल, तो अब बारी है क्विज यानी एक सवाल की।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? जवाब देने के लिए कॉल कीजिए 07966210428 पर।
जी हाँ, दिए गए ऑप्शंस के लिए बटन दबाइए और पाइए हमारा सरप्राइज गिफ्ट। कॉल निशुल्क है।
तो अब सुनते हैं एक ऐसा गाना जो भारत के बनने का जश्न मनाता है।
दिल, 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 से,
दिल, से। दिल से में आज हम सुनेंगे झूम झूम के नाचो आज। ये गाना हिंदुस्तानी में प्रेम धवन जी ने भारत की स्वतंत्रता के जश्न के लिए लिखा था।
झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के की।
सुमंगला दामोदरन ने भारत के सांस्कृतिक जन आंदोलनों पर शोध किया और उसी कार्य से निकल कर आया विरोधी गानों का एक संग्रह सॉन्ग्स ऑफ प्रोटेस्ट, जो इन्होंने सुस्मित सेन के साथ मिलकर निर्मित किया, और ये गाना जो अभी आपने सुना इसी संग्रह का भाग है।
तो आपको हमसे है देश कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्र, ईमेल और फोन के जरिए जरूर बताएं। अगर आप लोकतंत्र से जुड़ी अपनी कविताएं और गाने भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजें। हमारा पता है आइडियो सिंक मीडिया कंबाइंड, 1381 सेक्टर 37 फरीदाबाद 121003 हरियाणा, और ईमेल आईडी है freedom@idiosyncmedia.org यानी freedom@idiosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972।
कार्यक्रम हमसे है देश आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के वित्तीय सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बुलबुल बाग की कहानी रंजीत लाल की किताब द क्रोक क्रॉनिकल्स पर आधारित है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कामायनी
और कबीर आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर।
हमसे है देश।